श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय नौ श्लोक संख्या 30, 31, 32 और 33। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ईश्वरिषभाय सात्वताम् विदुरकाष्ठाय मोह कुयोगिनाम् निरस्त साम्या तिशयेन राधसा स्वधामनि ब्राह्मणि रंस्यते नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् मरणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होणा द्रपुलिंद पुलकशा आवीर शुंभा यवनाक सादया येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदता ऊतैर्महद्भिर् य इमा पुरो विभो निर्मायशेति यदमोषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृषिश्च भगवान् वचांसि मे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय नौ जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। तो जैसा कि हमें श्लोक चैप्टर नंबर 8 में परीक्षित महाराज ने भगवान से बहुत सारे प्रश्न किए, और अभी अध्याय 9 में सुखदेव गोस्वामी उनके उत्तर दे रहे हैं। और उसमें एक प्रश्न ये था, ब्रह्मा जी ने किस तरह से भगवान के दर्शन किए, किस तरह से ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया और कैसे इस सृष्टि का सृजन किया। तो उसी कथा को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने के विषय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी साक्षात भगवान के नाभि में से जो कमल उत्पन्न हुआ था उसमें से उत्पन्न हुए और बहुत समय तक अपने स्रोत को ना जानने के कारण वो वही कमल के ऊपर बैठे हुए थे। तो अचानक उसको तप की आवाज आई, उन्होंने देवताओं के 100 वर्षों तक तप किया, उसके बाद भगवान ने उनको प्रसन्न होकर अपने वैकुंठ का दर्शन कराया जहाँ पर हर प्रकार का सुख है, आनंद है और कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पर ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ देखा कि स्वर्ग लोक में किस तरह से सुंदर सुंदर बाग हैं, वहाँ पर सुंदर सुंदर देवी, सुंदर सुंदर जो भगवान के पार्षद हैं वो भगवान के जैसे ही दिखते हैं और वो सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही आनंद है वहाँ पर और हर प्रकार का आनंद देखने दिखा वहाँ पर। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए और भगवान अत्यंत ही मनोरम लग रहे थे और भगवान को देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। और ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से तपस्या की है, मुझसे मांगो, आप क्या चाहते हो, मैं आपको हर वर दे सकता हूँ, लेकिन इतना फिर भी याद रखना कि मेरे दर्शन मेरे गोलोक की प्राप्ति से बड़ा और कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो रहे थे, बार बार भगवान के चरण को स्पर्श करके उनको दंडवत कर रहे थे। भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया था और ब्रह्मा जी को कृतार्थ कर दिया। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने भगवान को स्वयं पर प्रसन्न देखने के उपरांत भगवान से कहा, आप तो सबके हृदय में बैठे हो तो आपको तो सबके विषय में पता है, तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मेरी एक इच्छा पूरी करके मुझे बताइए कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार से धारण करते हैं। उसका जो आपका ऐसा कोई भौतिक रूप तो धारण है ही नहीं, तो आप ये रूप कौन सा है जिसको आप धारण करते हो, और ये भी बताइए कि आप अपने से किस तरह से विभिन्न संयोग के द्वारा संहार, उत्पत्ति तथा स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। आप तो इन सब माया के झांसल से छूटे हुए हो, फिर ये काल का प्रभाव है, पैदा होना, जन्म लेना और उसके बाद क्षय होना, उसके बाद विनाश होना, ये सब जो है वो तो भौतिक जगत का ही कार्य है, तो आप उसमें कैसे आपके द्वारा ये सब होता है, और ये बताइए कि आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं जो अपने ही शक्ति से अपने को ढल लेते हैं, आपका संकल्प अचूक है, किस तरह से कर लेते हो आप इस संसार की उत्पत्ति करते हो और क्षण में उसका नाश भी कर देते हो। मकड़ी जिस तरह से बहुत ही प्रयास करती है और उस प्रयास के कारण उसको एक बहुत ही सुंदर घर बनता है अपने ही मुख से लार ग्रंथि निकाल के, और फिर एक समय आता है कि वो उसी को निगल देती है। तो ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, मुझे आप ये सब बताइए क्यों जानना चाहते हैं, ताकि ब्रह्मा जी इसलिए जानना चाहते हैं ताकि भगवान के विषय में जानने के बाद जो भगवान ने उनको आज्ञा दी है, क्या सृष्टि सृजन करने के लिए, तो वो ब्रह्मा जी चाहते हैं कि मुझे तो पता चले कि भगवान किस तरह से समस्त ब्रह्मांडों का, जीवों का प्राकृतिकरण करते हैं और किसी भी वस्तु और व्यक्ति में उनका कोई भी अटैचमेंट नहीं है, तो अगर हमें भगवान के मुख से ये सब सुनने को मिले तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे ना वैसे वैसे हम भगवान के बहुत निकट आ जाएंगे और ये भौतिक जो जंजाल है उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक हमें हृदय में ये इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के विषय में सुनें। तो उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं, श्लोक नंबर 30, ब्रह्मा जी कहते हैं, यावत् सखा सखुरिवेशति कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनमा। क्षमा कीजिएगा, यावत् सखा सखुरिवेशति कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनमा अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नतमदो जमानिना यावत् सखा सख्युरिवेशति कृता प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नतमदो जमानिना। शब्दार्थ, यावत् सखा सख्युरिवेशते कृत, यावत् मने चूंके सखा मित्र सख्यु मित्र को इवाजिस समान, ईश हे भगवान ते आपने कृत स्वीकार किया। भगवान को ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बहुत कृतार्थ हूँ क्योंकि आपने मुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र को स्वीकार करता है। प्रजा विसर्गे वी भजामी भोजन मा, प्रजा मन जीव आत्माएं विसर्गे यानी सृष्टि के कार्य, वी भजामी क्योंकि मैं इसे भिन्न रीति से करूँगा, भो हे भगवान जन्म जन्म लेने वाले, अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो, अविक्लव मतलब विचलित हुए बिना, ते तुम्हारा परिक्रमे सेवा कार्य में स्थित, मा में समुन्नत, मा मन कभी नहीं, मैं मन मुझको समुन्नत समुन्नत अर्थात हृदय उदय होने पर, मद उन्माद अज हे अजन्मा माननी ही अर्थात ऐसे मानने वाला। बहुत ही सुंदर ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे कि अब तो आपने मुझे अपने मित्र की तरह स्वीकार किया और मुझे एक बहुत ही सुंदर कार्य दिया है, अब मुझे आपका एक आशीर्वाद चाहिए। वो क्या है, अनुवाद देखिए, हे अजन्मा भगवान आपने मुझे उसी प्रकार हाथ में लाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद्मे समान हो। अब मैं विभिन्न जीव आत्मा की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा, मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मेरे कार्य के कारण कोई गर्व नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महान कार्य करने वाला हूँ, प्रजा की सृष्टि करने वाला हूँ, तो आप मुझ पर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे अंदर कभी अहंकार उत्पन्न न हो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के साथ निश्चय ही सख्य भाव में स्थित है, प्रत्येक जीव भगवान के साथ पांच विभिन्न दिव्य भावों में से किसी न किसी एक के द्वारा नित्य रूप से संबंध है। मतलब हम सब जितने भी जीव हैं उसका कृष्ण के साथ कोई न कोई स्वरूप में संबंध है। और कौन से स्वरूप हैं, कौन से रस हैं, शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य। हम भगवान के प्रसंग में इन पांच भावों की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ दिव्य सख्य भाव में स्थित थे। शुद्ध भक्त भगवान से इन पांचों में से किसी एक भाव से बंधा हो सकता है, वह वात्सल्य भाव भी हो सकता है, किंतु भगवत पर सदैव भगवान का दिव्य दास यानी सेवक होता है। कोई ना तो उनके समान है न उनसे बढ़कर, यही भगवत गीता की उक्ति है। यद्यपि भगवान के साथ ब्रह्मा जी का सख्य भाव है और उन पर विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च पद भार सौंपा गया है, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है कि वे ना तो परमेश्वर हैं ना परम शक्ति संपन्न। संभव है कि इस ब्रह्मांड में या इसके बाहर कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भगवान से भी अधिक शक्तिशाली निकल आए। फिर भी शुद्ध भक्त तो यही जानता है कि शक्ति तो भगवान द्वारा प्रवृत्त विभूति है और ऐसी शक्ति से युक्त जीवात्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी ने कूद कर समुद्र पार कर लिया था, किंतु श्री रामचंद्र ने सेतु पर चढ़कर ही पार किया, जिसका अर्थ ये नहीं है कि हनुमान जी उनसे अधिक बलशाली थे। कभी कभी भगवान भक्त को असामान्य शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु भक्त हमेशा जानता है कि यह शक्ति भगवान की ही है और वह स्वयं एक निमित्त मात्र है। भक्त कभी भी उन अभक्तों के समान फूला फूला नहीं रहता जो ब्रह्मवश अपने को भगवान मान लेते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति भगवान की माया के नियमों के द्वारा पग पग पर पाद प्रहार पाता है, वह भगवान से तदाकार होने की झूठी बात सोचे। इस प्रकार सोचना बद्ध जीवों के ऊपर फेंका गया माया का आखिरी पाश है। पहली भ्रांति यह होती है कि वह संपत्ति एवं शक्ति बटोर कर संसार का स्वामी बनना चाहता है। हम अभी तक पहली लाइन पर हैं, किंतु जब वह इस प्रयास में हताश हो जाता है तो भगवान के साथ सदाकार होना चाहता है। इस प्रकार संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनना और भगवान से तादात्म्य करना माया के ही भिन्न भिन्न जाल हैं। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त शरणागत होते हैं, अतः वे माया के मोह पाश से ऊपर हैं। किंतु ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त होने के कारण अल्पज्ञानी अभक्तुम को भगवान से तदात्म्य की बात के बारे में सोचना कभी पसंद नहीं करते। यद्यपि वे विश्व के आदि देव हैं और अनेक अद्भुत कार्य करने में सक्षम हैं, अल्पज्ञानियों को जब वे ईश्वर होने के झूठे विचार से फूल उठते हैं, ब्रह्मा जी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं। सबसे पहले तो बताया कि भगवान के साथ हर एक जीव का एक संबंध है, चाहे वो सख्य हो, दास्य हो, शांत भाव से हो, या फिर माधुर्य भाव से हो, या वात्सल्य भाव से हो। ये संबंध नित्य बना रहता है। हम जिस संबंध को इस भौतिक जगत में खोजते हैं, वास्तव में वो प्रेम वो संबंध केवल भगवान के साथ ही नित्य रूप से होता है। यहाँ भौतिक जगत में यही संबंध जो है वो नित्य नहीं होते हैं, वो इसलिए वो हमारे दुख का कारण बनते हैं, है ना, क्योंकि एक दिन हमें उनसे बिछड़ना पड़ता है या फिर इन संबंधों में कहीं ना कहीं दुख मिलता है तो वो हमारे दुख का कारण बनते हैं। लेकिन वास्तविक संबंध तो भगवान के साथ ही है, तो उसके अलावा भी भगवान भले किसी भी संबंध में जीव उनके साथ रहे, लेकिन जीव का जो नित्य कर्म है वो क्या है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, वो भले किसी भी रूप में किसी भी रस में सेवा कर सकता है। और भगवान के साथ ब्रह्मा जी का तो सख्य भाव था और उनको बहुत ही महान काम सौंपा गया था। कौन सा काम सौंपा गया था कि उनको विश्व की सृष्टि करनी है, तो ये बहुत ही महान कार्य है। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने एक बात ऐसी बताई है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव आत्मा बहुत महान कार्य करे, बहुत बहुत महान कार्य, हो सकता है वो कार्य भगवान के कार्यों से भी महान हो, लेकिन फिर भी हमको ये समझना है, ये हमेशा याद रखना है कि जिसको भी शक्ति प्राप्त होती है भगवान के द्वारा ही प्राप्त होती है, जिसकी बहुत ही सुंदर एग्जांपल श्री प्रभुपाद जी ने दी हनुमान जी के द्वारा। श्री राम नहीं पार कर पा रहे थे जंप करके उस महासागर को, लेकिन राम भक्त हनुमान ने केवल भगवान श्री राम का नाम लेकर ही उस महासागर को, उस बड़े समुद्र को पार कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि हनुमान जी के पास अधिक शक्ति है, अगर अधिक शक्ति है भी तो भी यही मतलब निकालना है कि ये भगवान की उसके ऊपर असीम कृपा है, तभी वो इतना महान कार्य कर सका। और भक्त पे ऊपर जब भक्त के प्रयास को, भक्त की भक्ति को, भक्त की साधना को भगवान देखते हैं ना, तो भगवान उसके ऊपर इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि वो भक्त ऐसे से कार्य कर सकता है कि संसार देख के हैरान हो जाता है कि ये एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति इतना महान काम कैसे कर सकता है। तो हमें भगवान कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ हमें अपनी सेवा और साधना को प्योर करना है। और इसके अलावा श्री प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात ये बताते हैं कि कभी भी भगवान के साथ मिलकर एक होने की बात नहीं सोचनी चाहिए। जीव का अलग अस्तित्व है, उसे सदैव व्यष्ट जीव आत्मा अर्थात इंडिविजुअल लेकर भगवान की सेवा करनी, तदात्मय या भगवान के साथ मिलकर एक होना माया का ही एक जाल है। श्री प्रभुपाद जी बताते पहले तो क्या सोचता है जीव कि शक्तियां बटोर कर संसार का स्वामी बन जाए, लेकिन जब वो ये नहीं कर पाता है क्योंकि माया का आक्रमण होता है, कितना शक्तियां बटोरेगा, कभी तो पग पग पर उसके जीवन में असफलता आती है, पदम पदम यद विपदा, हर समय उसको विपदा दिखती है, तो उसे लगता है कि ये शक्तियां बटोर कर भौतिक जगत में आनंद नहीं आएगा, क्या करना चाहिए, फिर तो भगवान के अंदर मिलकर एक हो जाना चाहिए ताकि भगवान जैसा ही शक्तिशाली हो जाए। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मा जी से कुछ सीख लेनी चाहिए कि इतना महान व्यक्ति है फिर भी भगवान के साथ दास भाव में भगवान की सेवा करता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वस्तुतः ब्रह्मा जी जीव आत्माओं को उत्पन्न नहीं करते, उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में यह अधिकार दिया गया कि वे जीव आत्माओं को पूर्व कल्प में किए गए कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करें। ब्रह्मा जी का कार्य इन जीव आत्माओं को निद्रा से जगाकर उन्हें उनके समुचित कार्यों में लगाना है। ब्रह्मा जी जीव आत्माओं की सृष्टि मन माने ढंग से नहीं करते, अपितु उन्हें विविध प्रकार के शरीर प्रकट करने का कार्यभार सौंपा गया है, जिससे वे तद अनुसार कर्म कर सके। इतने पर भी ब्रह्मा जी को इसका बोध बना रहता है, वे निमित्त मात्र हैं, जिससे वे अपने को परमेश्वर ना मान बैठे। असल में ब्रह्मा जी ने जीव आत्माओं को कभी भी उत्पन्न नहीं किया। जीव आत्माएं तो सृष्टि के आरंभ से ही हैं, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं न जायते, जीव आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, वो तो स्टार्ट से है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी जीव आत्मा को पूर्व कल्प में उन्होंने जो कार्य किए हैं उनके अनुसार एक शरीर प्रदान करते हैं। और ब्रह्मा जी का काम क्या है, जीव आत्माओं को निद्रा से जगाकर उनके समुचित कार्यों में लगाना है। कि अब क्योंकि कल्प होता है ना, तो कल्प के समय वो सारी जीव आत्माएं, जब कल्प का अंत होता है तो सारी जीव आत्माएं वो भगवान कारण दर्शन विष्णु के अंदर समा जाती हैं। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, नए कल्प की शुरुआत में उन्हें वहां से जगाकर उनके पुराने कर्मों के अनुसार कोई शरीर दे देते हैं, अपितु उन्हें विविध प्रकार के शरीर प्रदान करने का कार्यभार सौंपा जाता है, जिससे वे तदनुसार कर्म कर सकें, ताकि जीव आत्मा को भगवान बार बार ये मौका देता है ताकि वो कार्य कर सके और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पहुंच सके। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को सदैव ये याद रहता है कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ वो भगवान परमेश्वर जो है उनके आज्ञा के अनुसार होता है, मैं तो केवल उनकी आज्ञा के अनुसार जीवों को उनके कर्मों के अनुसार सृजन करता हूँ। भक्तजन भगवान द्वारा प्रदत्त कार्य में संलग्न रहते हैं और ऐसे कार्य निर्बाध चलते रहते हैं, क्योंकि भगवान से आदेश जो प्राप्त है सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं बल्कि भगवान को मिलता है, किंतु जो अल्पज्ञ है वे सफलता का कारण अपने को मानते हैं और भगवान को कोई श्रेय नहीं देते, यह अभक्त पुरुष का लक्षण है। तो हमें किसी भी क्षेत्र में यदि सफलता प्राप्त होती है तो उस सफलता का श्रेय जो है वो हम उसका अधिकार नहीं रखते, वो श्रेय केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जो अभक्त होते हैं वही ये कहते हैं कि ये सफलता मेरी योग्यता के कारण या मेरी शक्ति मेरे बल के कारण प्राप्त होती है। भक्त हमेशा क्या बोलता है कि सफलता तो मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान को इतना सब कहा और भगवान से आशीर्वाद मांगा कि मुझे कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद अब भगवान ब्रह्मा जी को उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच ज्ञानं परं गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च ग्रहाण गदितं मया। श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ज्ञानं परम गुह्यं मे, ज्ञानं मना प्राप्त ज्ञान, परम अत्यधिक, गुह्यं यानी गोपनीय, मे मना मेरा, यत विज्ञान, यत मना जो विज्ञान मना बोध, समन्वितम से युक्त है, सरहस्यम भक्ति सहित, तत उसकी अंगम च आवश्यक सामग्री, ग्रहणम अर्थात ग्रहण करने का प्रयत्न करो, गदितम व्याख्या की गई है मया यानी मेरे द्वारा। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित मुझ से संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, ज्ञानम परम गुह्यम में, भगवान के विषय में जानने की ब्रह्मा जी ने इच्छा प्रकट की थी कि आपके विषय में बता, तो भगवान कहते हैं मेरा मेरे से संबंधित जो ज्ञान है वो बहुत गोपनीय है, उसे भक्त के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भक्त का जब संग होता है उसके द्वारा हम भगवान के विषय में जान सकते हैं। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यान से ग्रहण करो। तो यहाँ ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं कि मुझे जानना है तो भक्तों के द्वारा ही जानना चाहिए, और मेरे द्वारा मतलब मुझे जानने की जो विधि है वो मेरे द्वारा बताई जा चुकी है, इसको ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि जीव का एक ही लक्ष्य है, भगवान को जानना। यदि जीव समस्त ज्ञान को प्राप्त करता है, बहुत कुछ पढ़ता है, बहुत कुछ सीखता है, लेकिन भगवान को नहीं जाना तो क्या लाभ हुआ उसके मनुष्य जन्म का। इसे भगवान कहते हैं कि च ग्रहण गदितम मया, मेरे द्वारा पहले से जो बताया गया है उसको ग्रहण कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मांड जी, इस ब्रह्मांड में भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं, अतः भगवान ने उनके चार प्रश्नों का उत्तर चार महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रूप में दिया है, जो चतुर्श्लोकी मूल भागवत के नाम से ज्ञात है। ब्रह्मा जी के प्रश्न इस प्रकार थे, एक, पदार्थ में तथा आध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं? दूसरा सवाल, भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं? तीसरा सवाल, भगवान अपनी शक्ति को किस प्रकार संचालित करते हैं? और चौथा सवाल, ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेश किया जाए? इन प्रश्नों का पूर्वाभास इस श्लोक में मिलता है। ब्रह्मा जी को सूचित करते हैं कि शास्त्रों में वर्णित भगवान विषय ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है, और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्ध न हो उसे समझ नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि जिस तरह वे व्याख्या करते जाएं उससे वे उत्तर के रूप में ग्रहण करते जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भगवान स्वयं उसे प्रदान करें। बड़े से बड़े संसारी चिंतक भी चिंतन द्वारा परम सत्य भगवान को नहीं समझ पाते। चिंतन से निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार तो हो सकता है, किंतु वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान को निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के परे है, इसीलिए इसे परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। अनेक मुक्त जीवों में से विरला ही भगवान को जान पाने का अधिकारी होता है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि लाखों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है और करने के लिए प्रयत्न करता है, और इनके मुक्त जीवों में से अनेक मुक्त जीवों में से कोई एक ही है जो उन्हें जान पाता है। अतः केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी ने स्पेशल चार सवाल पूछे थे और उसका उत्तर जो भगवान ने दिया है उसको चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है। पहला प्रश्न क्या कहा था? पदार्थ में तथा आध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं? भगवान के स्वरूप के बारे में पूछा, और भगवान की शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं उसके विषय में, भगवान अपनी शक्तियों में किस प्रकार संचालित करते हैं उसके विषय में, और ब्रह्मा को सौंपे हुए जो कार्य यानी सृजन का कार्य संबंध में इस किस प्रकार से उसे आदेश कैसे मिलेगा उसके विषय में। तो ये सारे सवाल जब भगवान ने पूछे, ब्रह्मा जी ने पूछे, तो आज भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वेता, कि मेरे विषय में ज्ञान जो है वो बहुत बहुत ही गुह्य है। हर कोई इस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य भी नहीं होता। जैसे भगवान बोलते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः यतामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेति तत्त्वतः। हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और इन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक मुझे वास्तव में जानता है। इसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। रहस्यम का अर्थ है भगवत भक्ति, सरहस्यम तदंगम च। तो भगवान को जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है बल्कि भक्ति की आवश्यकता है। जितनी शुद्ध रीति से हम अपनी भक्ति साधना करेंगे उतना ही हम भगवान को समझ पाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश इसीलिए दिया क्योंकि अर्जुन उनका भक्त था तथा मित्र था। भगवान कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेत्यदुत्तमम। तू मेरा भक्त है तथा मित्र है, इसीलिए तुझे दिव्य रहस्य समझा रहा हूँ। ऐसी योग्यता के बिना श्रीमद् भगवत गीता के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अतः जब तक कोई भक्त बनकर भक्तिमय सेवा नहीं करने लगता तब तक वह श्री भगवान को समझ नहीं पाता। कोई कोई लोग चैलेंजिंग मूड में अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान को समझना चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है? बुद्धि के द्वारा तो बहुत सारी भौतिक वस्तुओं को भी नहीं समझा जा सकता है। तो भगवान तो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, स्पिरिचुअल है, वो हमारी इस भौतिक बुद्धि से भला कैसे पकड़े जा सकते हैं? तो उनको केवल और केवल भगवान की जब प्यार से भक्ति की जाती है तभी उनको समझा जा सकता है। यह रहस्य ईश्वर प्रेम है। श्री भगवान को जानने का रहस्य इस योग्यता में निहित है। ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधित विधि विधानों का पालन आवश्यक है। इन विधि विधानों को वेदी भक्ति कहा जाता है और नवदीक्षित भक्त अपनी वर्तमान इंद्रियों में से इनका पालन करता है। ऐसे विधि विधान मुख्यतः भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन पर आधारित हैं, जिनका पालन भक्तों की संगति द्वारा ही संभव है। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि भगवान को समझने के लिए, उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए विधि विधान वैदिक भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए, अपनी इंद्रियों को वैदिक भक्ति में लगाना चाहिए और उसकी उसके प्रारंभ कहाँ से होता है? श्रवण से। जब हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे और भगवान का कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, तभी हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और ऐसी विधि विधान की जो भक्ति है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन पर आधारित है, जिनका पालन भक्तों की संगति के द्वारा ही संभव है। जब भक्त मिलेंगे तभी तो श्रवण करने के लिए गीता या भागवतम प्राप्त होगा और उसके साथ साथ भक्त होंगे तभी तो मिलकर हम संकीर्तन करेंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, फलतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की भक्ति में पूर्णतया पाने के लिए पांच मुख्य नियमों की संस्तुति की है। पांच नियम हैं, यदि हम उसको पूरा करते हैं तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और वो कौन से हैं? पहला है भक्तों की संगति। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्तों का संग हमें बहुत शीघ्रता से भक्ति में आगे बढ़ाएगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको जैसा बनना है ऐसे लोगों का संग स्टार्ट कर दो। अगर भक्त बनना है तो भक्तों की संगति करो और जैसा जैसे लोगों की संगति की जाती है वैसा स्वभाव हो ही जाता है। जैसा संग वैसा रंग। इसलिए पहली जो बात चैतन्य महाप्रभु ने बताई है वो क्या है? भक्तों की संगति। दूसरा, भगवान की महिमा का कीर्तन। जब संगति होगी तो हम भगवान के पवित्र नाम का, भगवान की लीलाओं का संकीर्तन करेंगे। तीसरा है शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवतम सुनना। जब हम भागवतम श्रवण करेंगे तो उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। चौथा, भगवान से संबंधित किसी पवित्र स्थान में वास करना, यानी दामवास। और पांचवा है, भक्ति सहित भगवान के श्री विग्रह को पूजना। ऐसे विधि विधान भक्तिमय सेवा के अंग स्वरूप है। अतः ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार भगवान इन चारों प्रश्नों तथा उनके अंगभूत प्रश्नों के विषय में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। अब भगवान ब्रह्मा जी से ये बताएंगे कि भगवान को ब्रह्मा जी कैसे जान सकते हैं, या कोई भी जीव आखिर भगवान को कैसे जान सकता है। भगवान कहते हैं, यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मत अनुग्रहात् यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मत अनुग्रहात् यावानहम यथा भावो। यावान का मतलब होता है मेरे जितने दिव्य रूप हैं, अहम यानी मैं, यथा जिस प्रकार, भाव मतलब दिव्य अस्तित्व, भगवान के स्वरूप, भगवान का अस्तित्व, यत उन रूप यानी विभिन्न रूपों तथा रंगों, गुण यानी गुण, कर्म का मन कार्य, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की दिव्यता, भगवान के कार्य तथा उसी प्रकार एवं निश्चय ही तत्व विज्ञान वास्तविक बोध अस्तु यानी हो ते तुमको मत अनुग्रहात् मेरी अहितुकी कृपा से। तो भगवान के विषय में जो बोध है, जो ज्ञान है, वो केवल और केवल भगवान की कृपा से, अनुग्रह से ही संभव है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यमेन्द्रिय सेवान मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फूर्ति यदा। जब जीव की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं तो स्वयं सुफूर्त होते हैं। जीव के अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि भगवान को जान सके, तो भगवान अपने अनुग्रह से ही जाने जाको देहो जनाए। भगवान को केवल वही जान सकता है जिसको भगवान जानने के लिए कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, परम सत्य भगवान विषय ज्ञान की दुर्हता को समझने में सफलता का रहस्य भगवान की अहितु की कृपा है। कैसे समझ सकते हैं? जब भगवान जीव पर कृपा करेंगे। भौतिक जगत में भी जिस प्रकार अनेक पुत्रों का पिता अपने किन्हीं लाडले पुत्रों को ही अपने पद का रहस्य बताता है, पुत्रों में से जिसे वह योग्य समझता है उससे ही रहस्य उद्घाटन करता है। समाज में महत्वपूर्ण मनुष्य अपनी दयालुता के द्वारा जाना जाता है। इसी प्रकार भगवान को जानने के लिए मनुष्य को उनका अत्यंत लाडला होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, आश्रम प्रभुपाद जी बताते हैं कि संसार में भी देखते हैं जो पुत्र बहुत लाडला होता है, जो बहुत प्यारा लगता है, उस पर हर रहस्य। शिष्य अगर लाडला होता है तो गुरु उसको संपूर्ण रहस्यमयी बातें बता देते हैं। पुत्र यदि लाडला होता है तो पिता उसके ऊपर अनुकंपा करता है। उसी तरह यदि कोई भक्त भगवान का लाडला बन जाता है तो सब कुछ उसे ज्ञात हो जाता है, क्योंकि भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। यहाँ आगे कहते हैं, समाज में महत्वपूर्ण मनुष्य अपनी दयालुता के द्वारा ही जाना जाता है। इसी प्रकार भगवान को जानने के लिए मनुष्य को उनका अत्यंत लाडला होना चाहिए। भगवान असीम है, कोई भी उन्हें पूरी तरह जान नहीं सकता। केवल भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति की उन्नति के सहारे ही भगवान को जानने के लिए प्रिय पात्र बनना चाहिए। केवल और केवल भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस। यदि भगवान की प्रेम के साथ भक्ति करेंगे अर्थात सेवा करेंगे तो ही भगवान हमें हम पर कृपा करेंगे और हम भगवान के प्रिय पात्र बनकर भगवान को समझ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी पर अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः उन्हें अपनी अहितुकी कृपा प्रदान करते हैं जिससे वे भगवान का वास्तविक बोध प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी पर क्यों प्रसन्न है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किया था? तपस्या की थी। इसका अर्थ है यदि हम तपस्या करेंगे तो हम भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अब कौन सी तपस्या करनी है? सिंपल है, जंगल में नहीं जाना है, और भी कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है जो कठिन रीति से भगवान को जानने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। बस भगवान की प्रेममयी भक्ति से भगवान को प्रसन्न करना है, अपनी इंद्रियों से तपस्या करनी है, जीवा से केवल भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना है, कर्णों से भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, हृदय में किसी के लिए द्वेष या निंदा भाव नहीं रखना है, सबके प्रति स्नेह और करुणा का भाव रखना है। जब हम प्योरिटी के साथ भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान अवश्य अपनी अहितुकी कृपा प्रदान करेंगे ताकि हम भगवान के वास्तविकता को समझ सके। ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, कि हम भगवान को जान सके, और वो तभी संभव है जब हम भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि कोई मनुष्य केवल सांसारिक शिक्षा या बौद्धिक अभ्यास से परम सत्य परमेश्वर को नहीं जान सकता, प्रमाणिक गुरु तथा भगवान में अटल विश्वास होने पर ही परम सत्य परमेश्वर को जाना जा सकता है। भगवान भी कहते हैं, ना हम वेदाय न तपसा न दाने न चेष्टया, न वेद पढ़ने से, न तपस्या करने से, न दान करने से और न ही से पूजा करने से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। भक्त्या अनन्या शक्य, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवान के अंदर अटल विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण कृष्ण अवश्य मेरा कल्याण करेंगे, कृष्ण अवश्य मेरा उद्धार करेंगे, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के कार्य करने हैं, बाकी जो भी वो करेंगे उसी में मेरा कल्याण होगा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे, प्रमाणिक गुरु तथा भगवान में अटल विश्वास होने पर ही परम सत्य परमेश्वर को जाना जा सकता है। ऐसा विश्वास कि जो भी करेंगे वो उसी में मेरा कल्याण है और मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है। ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति भले ही सांसारिक दृष्टि से अशिक्षित क्यों न हो, भगवत कृपा से भगवान को स्वतः जान सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, नहीं, वो भले कैसा ही हो, अज्ञानी ही क्यों न हो, यदि भगवान उसके प्रेम से, उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो वो भगवान को भी समझ सकता है, भगवान को भी जान सकता है। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान कि यह भगवान पर निर्भर करता है कि वह किसके सामने प्रकट हो और किसके सामने समक्ष ना हो। ना भगवान कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। वे अपनी योग माया शक्ति से अपने को अश्रद्धालुओं से छिपा कर रखते हैं। है ना, भगवान कहते हैं योग माया समावता मूढ़ोयम न बिजानाति, जो बेवकूफ हैं, जो जानना नहीं चाहते, जिनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो प्रेम नहीं करते, भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते। भगवान की मर्जी है, तो भगवान को समझने का केवल एक ही तरीका है कि भगवान से प्रेम करें, भगवान के आदेशों का पालन करें, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। और अगर भगवान को नहीं जाना तो हमारे संसार में आना ही व्यर्थ है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके समक्ष भगवान अपना रूप गुण तथा लीलाएं प्रकट करते हैं। भगवान निर्विशेष नहीं है जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, किंतु उनका वह रूप नहीं होता है जिसका हम अनुभव करते हैं। वे अपने के क्षमा अपने भक्तों के समक्ष अपना रूप, यहाँ तक कि अपनी परमाप भी प्रकट करते हैं, और यावान का यही अर्थ है कि जैसा कि श्रीमद् भागवतम के महान पंडित शिला जीव गोस्वामी ने बताया है, भगवान अपने अस्तित्व की दिव्य प्रकृति को उद्घाटित करते हैं। संसारी विवादक भगवान के रूप की संसारी अवधारणा बनाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का कोई संसारी रूप नहीं है, अतः जो अल्पज्ञानी हैं, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान निराकार यानी निर्विशेष है। वे संसारी तथा आध्यात्मिक रूप में अंतर नहीं कर पाते। उनके अनुसार जिसका भौतिक रूप नहीं है वह निर्विशेषवादी होगा। यह निष्कर्ष भी संसारी है, क्योंकि रूपहीनता रूप की विपरीत अवधारणा ही है। संसारी अवधारणा को नकारने से दिव्य स्वरूप स्थापित नहीं होता। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, शास्त्र क्या कहता है, भगवान का कोई सांसारिक या ऐसा हमारे जैसा स्वरूप नहीं है। तो ऐसा स्वरूप नहीं है इसका मतलब ये थोड़े कि भगवान का स्वरूप ही नहीं है, है ना। भगवान का स्वरूप है, मगर भगवान का स्वरूप दिव्य है। तो रूपहीनता रूप की विपरीत अवधारणा ही है। जो ये सोचते हैं उनका कोई रूप ही नहीं है, तो वो भी तो रूप का ही एक अपोजिट विचार है कि भाई ऐसा निराकार स्वरूप है। तो संसारी अवधारणा को नकारने से दिव्य स्वरूप स्थापित नहीं होता है। अगर हम ये सोचे भाई संसारी रूप नहीं है, तो निराकार कोई दिव्य रूप नहीं हो सकता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान का दिव्य रूप होता है, और वे अपनी इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का उपयोग किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। तो श्री प्रभुपाल जी बोलते हैं, सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा, तो ब्रह्मा जी बताते क्या है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का स्वरूप अंगनीयस्य सकलेन्द्रिय वेत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कल्यन्ति चिरं जगन्ति। कि भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि वो हर एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। हम आंखों से केवल देख सकते हैं, कानों से केवल सुन सकते हैं, मगर भगवान का रूप हमारी तरह जड़ नहीं है। भगवान सच्चिद आनंद है, तो जिस इंद्रिय से जो कार्य करना चाहे वो कर सकते हैं। उदाहरणार्थ वे अपने नेत्रों से भोजन कर सकते हैं, अपने पांव से देख सकते हैं। रूप की संसारी धारणा में कोई ना तो आंख से खा सकता है, न ही पांव से देख सकता है। संसारी शरीर तथा सच्चित आनंद के दिव्य शरीर में यही अंतर है। आध्यात्मिक शरीर रूप विहीन नहीं होता, यह भिन्न प्रकार का होता है, जिसके विषय में हम अपनी संसारी इंद्रियों से धारणा नहीं बना सकते। अतः रूप विहीन का अर्थ है संसारी रूप से रहित अथवा दिव्य शरीर धारण करने वाला, जिसके विषय में अभक्तों को कल्पनिक विधि द्वारा बोध नहीं हो सकता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि रूप विहीनता का मतलब ये नहीं है कि भगवान का स्वरूप ही नहीं है, भगवान का दिव्य शरीर है। और वो दिव्य शरीर केवल भक्ति के द्वारा ही अभक्तों को काल्पनिक विधि के द्वारा उसके भगवान के दिव्य शरीर के द्वारा को नहीं समझ सकते, बल्कि उसके लिए शुद्ध प्रेमय भक्ति करने की आवश्यकता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान अपने भक्तों के समक्ष अनंत प्रकार के दिव्य शरीर प्रकट करते हैं, जो एक दूसरे के समान होते हुए भी स्वरूपों में से भिन्न होते हैं। भगवान के कुछ दिव्य शरीर श्याम वर्ण के होते हैं, तो कुछ श्वेत वर्ण के, कुछ लाल लाल होते हैं, तो तो कुछ पीत वर्ण होते हैं, कुछ चतुर्भुज होते हैं, कुछ दो भुजाओं से युक्त होते हैं। इनमें से कुछ मछली की तरह तो कुछ सिंह के समान। भगवान के ये विभिन्न दिव्य रूप भगवत कृपा से ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं और इस प्रकार निर्विशेषवादी के झूठे तर्क की भगवान के रूप नहीं होता है भगवत भक्तों को नहीं बाते, भले ही वे भक्त भक्ति में बहुत बड़े छड़े ना हो। जब कोई छोटा भक्त भी भगवान को रूप विहीन नहीं मानता, क्योंकि वो भगवान के अंदर श्रद्धा रखता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है कि भगवान मत्स्य कच्छप वामन वराह नरसिंह स्वरूप धारण करके भक्तों के ऊपर अपनी अहितों की कृपा करने के लिए बार बार संसार में आते हैं। भगवान में अनगिनत दिव्य गुण पाए जाते हैं, इनमें से एक है शुद्ध भक्त के प्रति उनका प्रेम। इस संसार के इतिहास में हम उनके दिव्य गुणों की सराहना कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। उनके सारे कार्य भक्तों से संबंधित होते हैं। श्रीमद् भागवत भक्तों से संबंध भगवान के ऐसे अनेक कार्यों से भरा पड़ा है, किंतु अभक्तों को भगवान की इन लीलाओं का कोई ज्ञान भी नहीं होता। जब भगवान 7 वर्ष के थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन के अपने शुद्ध भक्तों को इंद्र के कोप से बचाया, जो वर्षा के द्वारा उस स्थान को आप्लावित कर रहा था। 7 वर्ष के बालक द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना भले ही श्रद्धा विहीन के लिए अविश्वसनीय लगे, किंतु भक्तों के लिए यह सर्वथा विश्वसनीय है। भक्त को भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास है, किंतु श्रद्धा विहीन लोग भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हुए भी इस पर विश्वास नहीं करते। मतलब इतना तो वो भी मानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन ये नहीं मानते कि भगवान 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठाते हैं, 6 दिन के जब होते हैं तो पुतना का वध करते हैं। भगवान की लीलाओं पर उन्हें कोई विश्वास नहीं होता है। ऐसे अल्पज्ञानी यह नहीं समझ सकते कि भगवान तो शाश्वत रूप से भगवान है, और वे लोग लाखों करोड़ों वर्षों तक ध्यान या दार्शनिक चिंतन करके भी भगवान नहीं बन सकते। इस लोक से संसारी विविधकों की निर्विशेष व्याख्या का खंडन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मनुष्य की ही तरह भगवान के भी गुण हैं, रूप हैं, लीलाएं हैं तथा कार्य होते हैं। भगवान की दिव्य प्रकृति के ये सारे विवरण भगवत भक्तों द्वारा अनुभूत तथ्य है। ये भगवत कृपा से केवल शुद्ध भक्तों को ही ज्ञात हो पाते हैं, अन्य किसी को भी नहीं। तो ये जैसे श्लोक में भगवान ने बताया है कि यावानहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म, मेरे भाव मेरे रूप मेरे गुण मेरे कर्म को तथैव तद विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। केवल भगवान की कृपा से ही हम भगवान की लीलाओं को गुण को रूप को सबको जान सकते हैं। भगवान की दिव्य प्रकृति के ये सारे विवरण भगवत भक्तों के द्वारा ही अनुभूत तथ्य है। ये भगवत कृपा से ही केवल शुद्ध भक्तों को ही ज्ञात होते हैं, अन्य किसी को नहीं। यहाँ से सिर्फ इतनी बात समझनी है कि कुछ ऐसा विधि विधानों को हम सीरियसली करें, गुरु महाराज के आदेशों को पूरा करें, शुद्ध भक्तों का संग करके हरि नाम संकीर्तन करें, कि हम जैसे पतित जीव इस योग्य हो सके कि वह भगवान की कृपा प्राप्त कर ले। बस हमारा काम सिर्फ ये है कि हम भगवान की अपनी चेष्टा से भगवान को प्रसन्न करके भगवान की कृपा को प्राप्त कर लें, और जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो स्वतः सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कि भगवान ने कैसे ये किया, भगवान ने कैसे है ना संसार को उत्पन्न किया, वो सब कुछ भगवान के विषय में जो है वो तभी ज्ञात होता है जब भगवान हम पर कृपा करते हैं, अनुकंपा करते हैं। उस कृपा को प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।